जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति द्वारा फल का हेतु होवे सो अदृष्ट फल का हेतु कही है। जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति से बिना साक्षात फल का हेतु होवे सो अदृष्ट फल का हेतु कही है, वो दृष्ट फल का हेतु हो गया वो, ठीक है ना। ईश्वर की जो सेवा है सो धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है। ईश्वर की सेवा की करेगी, धर्म की उत्पत्ति करेगी, तो अंत धर्म क्या करेगा, अंतःकरण साफ कर देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अदृष्ट बन गई। और आचार्य की सेवा धर्म की अपेक्षा बिना आचार्य की प्रसन्नता करके उपदेश रूप फल का हेतु है। जो आचार्य की सेवा करी वो प्रसन्न हो गया तो उसने कुछ दे देता, लाया भी तू आ कर ला, दोनों काम बन गए ना। जाते अदृष्ट फल का हेतु है और धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है, उदा भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुरंत फल भी मिल गया। जैसे कहेंगे ना जो आप गए साढ़े सिर ते जाते हाथ रखता बस साडा काम बन गया, ये केड़ा हो गया, ये सीधा ही फल हो गया, दृष्ट फल हो गया। और जेड़ी सेवा जेड़ी तुसी सेवा कीती उदा एक संस्कार भी मन दे विच बैठ गया, वो अदृष्ट फल भी मिलेगा। इस रीति से आचार्य के सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम है। जानते जिज्ञासु सर्व प्रकार से ब्रह्म से वेत्ता आचार्य की सेवा करे। आचार्य की कैसे करे सेवा, अब प्रकार दस रहे हैं किस प्रकार सेवा करे। जब ही गुरु संग करे दंडवत, जिमी दंडवत धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। देखो क्या करा, वह जब ही गुरु संग जदों गुरु के पास रहे ते की करे, सवेरे उठ के पहला दंडवत प्रणाम करे डंडे की तरह लेट करके, ठीक है। धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज, पाद सरोज मने सरोज मन दे कमल, जोड़े पाद मने पैर, पैर रूपी जो कमल है उना दी जो रज मने तूड़ी है, उत्तम अंग मने अपने मस्तक ते धारण करे। जब गुरु प्राप्त होवे तब दंड की न्यायी साष्टांग प्रणाम करे और पावन कहिए पवित्र है जो पाद रूपी सरोज कमल, तिनकी राज जो तूरी ताकू उत्तम अंग कहिए मस्तक पर ऊपर धारे। अब गुरु समीप पुनकीनिय वासा, अब फिर कैसे करना चाहिए, गुरु के पास रहवे, गुरु समीप पुनकीने वासा जो अत उत्कट हो जग आसा, जो बहुत ही तीबर इच्छा होए अपने आप नू जानन दी ते फिर गुरु दे पास ही रहे, ठीक है ना। तन मन तन वच अर्प देवे जो चाहवे ही ये बंधन छेवे, वो तन मन तन और बाणी सब कुछ गुरु नू अर्पण कर दे, और जो चाहवे निज बंधन छे जो अपना ये संसार तो मुक्ति चाहुंदा होवे। अब देखो तीन चार बातां निकलियां, तन मन धन और वच मैने बाणी, इन्हां दा इन्हां नू गुरु नू कैसे अर्पण करना है, तन नू कैसे अर्पण करना बई, मन नू कैसे गुरु नू आंदे ना गुरु नू चढ़ा दिता, और वच मैने बाणी इन्हां दा इन्हां नू गुरु नू कैसे अर्पण करना है, तन नू कैसे अर्पण करना बई, मन नू कैसे गुरु नू आंदे ना गुरु नू चढ़ा दिता, मन भी गुरु नू चढ़ा दो, तन भी धन भी और बाणी भी कैसे चढ़ाउणी है, एदा प्रकार सुनो। तन की बहु सेवा विस्तारे, तन करके तन कैसे चढ़ाना देना आप गुरु नू, अपना आप समर्पण कर देता गुरु नू कैसे, तन कर बहु सेवा विस्तारे आज्ञा गुरु की कभी न टारे। ये तो हो गया शरीर करके गुरु नू शरीर भेट कर देता, क्या तन कर बहुत सेवा विस्तारे, बहुत सेवा करे तन से अपने से, अपने शरीर दे नाल गुरु दी बहुत सेवा करे, आज्ञा गुरु की कभी ना टारे, गुरु दी आज्ञा कभी टाले ना। ए तो हो गया शरीर अर्पण, ठीक है। अब मन कैसे अर्पण करना है, मन में प्रेम राम सम रखे है प्रसन्न गुरु इम अभिलाषे। मन कैसे, ये तन अर्पण दस दिता कैसे, तन कर बहुत सेवा विस्तारे, अपने शरीर दे नाल गुरु दी बहुत सेवा करे। ये तो शरीर अर्पण हो गया, गुरु दी आज्ञा ना टाले, ये हो गया शरीर अर्पण। अब मन अर्पण कैसे करना, मन में प्रेम राम सम रखे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी है ऐसे प्रेम गुरु दे नाल रखे। ते क्या मन विच इच्छा की होवे, मन विच इच्छा ये होवे मैं इसलिए गुरु नाल प्रेम कर रहा हाँ गुरु मेरे ते प्रसन्न हो जावे, ये मन अर्पण हो गया। ठीक है, अब देख लेना आपां की अर्पण कीता है किसे अपने गुरु नूं। ठीक है, दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हर हरि हर ब्रह्म गंगर भी जाने, अपने गुरु दे प्रति कभी भी दोष दृष्टि नहीं आउन देनी। हरि मैंने विष्णु, हर मैंने भगवान शंकर, ब्रह्मा जी गंगा, रवि मैंने सूरज, ऐसा गुरु नूं समझे भी सारे देवी देवत्यां दा निवास मेरे गुरु दे शरीर विच है। गुरु मूर्ति को हिये में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा, एदा ऐसे अर्थ लगाना, गुरु मूर्ति को हिये में ध्याना धारे जो चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहुंदा होवे ओ गुरु मूर्ति दा अपने हृदय दे विच ध्यान करया करे। ये तो हो गया तन और मन दा अर्पण। अब तन कैसे अर्पण करना है, तन मैंने तन संपत्ति जो है वो कैसे अर्पण करनी है। देखो तन किनू कहिंदे, पहला ये सुन लो, पत्नी पुत्र भूमि पस दासी, दास द्रव्य गृह बृह निवासी, धन पद इन सब ही को भाख है गुरु प्रसन्न दूर तेरा नास है। अगर गुरु नु प्रसन्न करना होवे ते क्या करे, पत्नी पुत्र भूमि पशु दास दासियां द्रव्य जमीन जायदाद सारे नु त्याग के गुरु की शरण चले जाए। कोई है छड़ सकदा अपना ऐसा, ये हो गया गुरु नु अर्पण। क्यों गुरु नु अर्पण हो गया भी, ये तो तुसी अपना घरे छड़ आए, ते गुरु नु अर्पण कैसे हो गया, अंदा गुरु दी प्राप्ति वास्ते त्याग कीता ते गुरु नु ही अर्पण आए। जे आपां केदी प्राप्ति वास्ते त्याग कर रहे हैं, गुरु दी प्राप्ति वास्ते, वो गुरु नु अर्पण हो गया। ये धन अर्पण दा गुरु दा प्रकार हो गया, कैसे धन नु गुरु नु कैसे धन अर्पण करना है, ये प्रकार। आ दूसरा सुनो, धन अर्पण को भेव एक कहो सुन दूसरो, ये धन अर्पण का भेद बता देता एक, अब दूसरा भी सुन लो। पहला केड़ा बता देता, पहला बताता भी पत्नी पुत्र धन संपत्ति सारी नु त्याग के गुरु दी शरण चले जावे, ये गुरु नु अर्पण हो गया सारा धन। क्यों हो गया, क्योंकि केदे वास्ते तुसी त्याग कीता, गुरु वास्ते, तो समझो गुरु नु पेट चढ़ गया। ठीक है, अब दूसरा सुन लो, तन अर्पण को भेव एक कहो सुन दूसरो, है गृहस्थ गुरुदेव याज्ञवल्क सम देसते ही। अगे जे गृहस्थी, जे गुरु ताडा गृहस्थी है ते फिर त्यागो ना सब कुछ उन्हूं दे दो, जे गृहस्थी नहीं है ते फिर त्याग के उहदी शरण चले जाओ। ये दो प्रकार हो गए ना तन अर्पण दे। देखो, पत्नी से आदि लेके ब्रिहे कहिए, धन पर्यंत सारे तन कहिए हैं, तिन सर्व को त्याग करके त्यागी जो गुरु है ताकि शरण होवे। जह धन अर्पण कहिए हैं, ये धन अर्पण कह देता सारे नु त्याग करके अपा चलते हूं गुरु की शरण विच। काहे ते गुरु त्यागी है सो आप तो अंगीकार करे नहीं, अब गुरु भी त्यागी है वो तो लेगा नहीं, ठीक है ना, परंतु तेन गुरु की प्राप्ति वास्ते धन का त्याग किया है, जाते ऐसा जो त्याग है सो भी गुरु को अर्पण किए है, ऐसा जो त्याग है वो भी गुरु नु पहुंच गया समझ लो। और गृहस्थ जो गुरु होवे तिनको समग्र चढ़ा देवे, जा दूसरे प्रकार का धन अर्पण किए है, कु शंका करे हैं जो ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ नहीं होवे, वो कह रहे भी गृहस्थ तो ब्रह्म ज्ञानी हो नहीं सकता गृहस्थी विच, कोई ऐसा शंका कर लेवे भी जेड़ा गुरु है वो गृहस्थी गुरु ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, गृहस्थ दे विच किसी नु ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, अंदा ऐसी गल नहीं है, एक जरूरी नहीं है। ये पूर्वले जन्म दे संस्कार जाग्ञवल्क आदि गृहस्थी थे, जनक आदि गृहस्थी थे, उन्होंने कैसे हो गया फिर, ये कोई निजम नहीं है, ये तो अपने अपने अंतकरण की शुद्धि है। को गृहस्थ विच रह के अंतकरण की शुद्धि करके तो वहीं भी ज्ञान हो जाएगा। सरवण मनन निध्यासन करता रहे उत्थे भी हो जाएगा, त्याग करके गुरु की शरण जाओगे उत्थे भी हो सकता है। अब एक ही क्या रहा है, देखो काहे ते याज्ञ बलक और उदालक से आदि लेके ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ ही वेद विषय बहुत सुने जावे हैं। एक दो आदमियों का नाम लेता, दो महापुरुषों का, एक याज्ञ बलक एक उदालक मुनि। कहता भी तो गृहस्थी सी, इन्हों फिर कैसे हो गया ब्रह्म ज्ञान जो गृहस्थी नहीं हो सकता। तो यह अर्थ की होया, यदा अर्थ यह है अंतकरण की शुद्धि करनी है, अपने अंदर की शुद्धि करनी है। वह तुम घर बैठ के कर लो, चाहे गुरु की शरण में जाके कर लो, चाहे जंगल में जाके कर लो, जा सब कुछ त्याग के कर लो, तानू जैसे ठीक लगता वो कर लो, अंतकरण की शुद्धि कर लो, वही ज्ञान हो जाएगा। जाते गृहस्थ भी आचार्य संभव है। अब बाणी कैसे अर्पणी है, बाखत गुण गन गुरु के बाणी शुद्ध दोष ना कभू अर्पण कर इम बुद्ध। गुरु की सदा स्तुति करता रहे मन दे बाणी दे नाल, सदा गुरु की स्तुति करता रहे, ये हो गया बाणी अर्पण। चार उन्हें दस दिते केड़े केड़े, तन मन धन और बाणी। ये इस प्रकार से सारे अर्पण कर दो, तन करके सेवा करनी, मन करके गुरु दे प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं रखनी, और मन दे विच प्रेम रखना। यह हो गया मन दा अर्पण, धन दा अर्पण, सब कुछ छड़ करके त्याग करके आप गुरु की शरण चल गया, यह गुरु नूं अर्पण हो गया। और बाणी गुरु की स्तुति करदा रहे, यह बाणी होगी, निंदा ना करे कभी। आप सुनो, जो चाहे कल्याण तन मन धन वच, यही है ना, जो चाहे कल्याण आंदा, जो कल्याण चाहता हो अपना, ठीक है ना, तन मन धन वच अर्प इम बसे बहुत गुरुस्थान बिक्षत जीवन करे। आंदा जिसने तन मन धन बाणी जेड़े ये तरीके दसे इस तरीके ना अर्पण कर दिती है गुरु नू, फिर की करे बसे बहुत गुरुस्थान, और गुरु दे पास रहे, गुरुस्थान में रहे, बिक्षाते जीवन करे, अपना भिक्षा मंग के अपना टाइम पास करे, ठीक है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे सो पूर्व रीति से तन आदि का अर्पण करके आप बहुत बहुत काल गुरु जहां होवे ता स्थान विषय समीप वास करे और आप भिक्षाते जीवन कहे करे, भिक्षाते जीवन करे मैंने प्राण धारण करे, ठीक है ना। सो भिक्षा भिक्षा मंगनी कैसे चाहिए है ना, हुन भिक्षा मंग के क्या क्या करे, कैसे कैसे रहना चाहिए शिष्य नू, देखो। सो भिक्षा धर दैस के आगे निज भोजन को नहीं पुन मांगे, जिहड़ी भिक्षा पिंड दे विचों गांव दे विचों जां शहर दे विचों जिहड़ी भिक्षा मंग के लियांदी आ, दैस के मैंने गुरु दे चरणां दे विच रख दित्ती, मंगे ना प्रसाद, मैनू भी दे दो प्रसाद दे, गुरु प्रसन्न है दे दे, नहीं तो नहीं सी। ऐसा थोड़ी है भी गुरु के चरण रख दिता तो देगा ही नहीं, तो यही कह चल कोई नहीं पुत्र छक है ना। सो भिक्षा धर दैस का, जैसे आप भोग नहीं लगाते भाई, सानू कोई प्रसाद आप बनाया हो लंगर का तो आप करते हैं गुरु महाराज दे पहले भेट कर दें, तो भोग लग गया तो जदों आप गुरु के पास भिक्षा लैके जावे तो गुरु के पास रख देंगे तो की हो गया, भोग लग गया। यह है दृष्टि उसके कहने का मतलब है ना। सो भिक्षा धर दैस के आगे निज भोजन को नहीं पुन मांगे, जो गुरु दे सो जाठर डाले नहीं दूजे दिन बिरती संभाले। जो गुरु दे दे उन्हूं खा के जाठर मैंने पेट में डाल ले, नहीं नहीं देवे तो फिर दूसरे दिन भिक्षा मंगने चल जाए, कोई गल नहीं। कभी कभी गुरु भिक्षा भी ले लेंगे है ना, ना भी दी हो तो पहला की करता है। सो भिक्षा अन्न शिष्य लावे, सो आप ही भोजन नहीं कर लावे, किंतु दैशक जो गुरु है तिनके आगे धर देवे, और भिक्षा गुरु के आगे धर के अपने भोजन को गुरु से मांगे नहीं, और एक दिन में दूसरी बार भिक्षा ग्राम में भी मांगे नहीं। भिक्षा एक दिन ही मांगनी है, एक दिन एक बार ही। हाँ चल को एक गुरु ने नहीं दी और मैं दूसरे घर च लै आना, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हैं कैसे कैसे निजम है। किंतु गुरु जो कृपा करके देवे तो भोजन करे, और गुरु जो शिष्य की श्रद्धा की परीक्षा के निमित्त नहीं देवे तो दूसरे दिन वृत्ति को मैंने भिक्षा को दूसरे दिन करे। फिर यदि परीक्षा करने वास्ते ना देवे तो पुन गुरु के आगे धारे भिक्षा शिष्य सुजान निर्वेद ना जी में करे जो जी निज चाहे कल्याण। देखो फिर दूसरे दिन भिक्षा करने चल जे, मान लो आज गुरु ने नहीं वापस की भिक्षा, दूसरे दिन चले जे भिक्षा करना, फिर सुजान मने बुद्धिमान जो शिष्य है निर्वेद ना जी में करे। निर्वेद मने ग्लानी ना लियावे मन में, मैं इन्नी दूर भिक्षा लैन गया, भुख लगी सी मैनू, गुरु ने सारी रख ली, मैनू तो दिती नहीं एक रोटी भी। ऐसा जेड़े ग्लानी मन च ना आउण देवे, जो चाहे कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहुंदा होवे तो। निर्वेद नाम ग्लानी का है, अन्य अर्थ स्पष्ट है। इस व्यवहित अवसर जब पेखे मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे, जो ऐसा अवसर देख लिया उसने क्या भी एकांत विच गुरु कल्ला है और गुरु प्रसन्न भी है, फिर बिनती करे दो कर जोरी गुरु आज्ञा ते प्रश्न बिहोरी। फिर बेनती करे हे गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहना, ते जे गुरु के हां भी पूछ तब प्रश्न करे। ये प्रश्न करदा प्रकार बता देता। इस रीति से व्यवहार करते जब गुरु का अवकाश दे, अवकाश मैंने देखे भी गुरु एकांत विच है, कल्ले हैं, पढ़ नहीं रहे, बैठे हैं शांति ना, तब देखे और प्रसन्न मुख से गुरु जब अपने सन्मुख देखे तब हाथ जोड़ करके गुरु की स्तुति करे और विनती करे हे भगवान मैं पूछना चाहूं, तब गुरु आज्ञा करे तो प्रश्न करे। और किंचित जन्मांतर के उत्तम कर्म ते गुरु कृपा करके शिष्य को तन अर्पण आदि की सेवा से बिना ही उपदेश कर देवे। कदी ऐसा भी हो जाता ना, किसी ने गुरु की सेवा ते कीती नहीं, ऐसे ही कुछ मिल गया भाई, ऐसे भी किसे मिल जाता ना, भी मान लो भी गुरु की सेवा ते कीती नहीं, ऐसे ही कुछ मिल गया, वो कैसे मिल गया फिर। तुसी कह रहे भी सेवा करो ता मिलेगा, वो बैठे बैठाए मिल गया कुछ है ना, तो वो फिर की हो गया, वो सुन लो है ना। कदाचित जन्मांतर के उत्तम संस्कार से, वो जन्मांतर दे ताड़े कोई पिछले कर्म दे उत्तम संस्कार है तब ऐसा हुआ भाई। पिछले जन्म च कीती होगी सेवा, सेवा तो बगैर तो मिल नहीं सकता। जे इस जन्म च नहीं पता लग गया पे आपा कीती सेवा नहीं, पर मिल तो गया कुछ ना कुछ, बहुत कुछ मिल गया, तो फिर सेवा तो बगैर तो मिल नहीं सकता। इस जन्म च नहीं तो पिछले जन्म च अवश्य कीती होगी है ना। किंचित जन्मांतर के उत्तम संस्कार ते गुरु कृपा करके शिष्य को तन अर्पण आदि की सेवा से बिना ही उपदेश कर देवे तो विशुद्ध अधिकारी का कल्याण हो जावे है। काहे ते गुरु सेवा दो फल है, एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अंतःकरण की शुद्धि, जो दोनों सिद्ध हैं और दोनों उसके पहले बने पे है, तो फिर उपदेश लैण दी देरी है तो कम बन जाएगा। तन मन धन बाणी अर्पे जिहे सेवत शिष्य लाए चित लाए, चित है ना, जिहे सेवत चित लाए सकल रूप सो आप है दादू सदा सहाय। ये विचार सकते ने, तीन तरंगा समाप्त हुईया, कल प्रसंग चलेगा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान। अब इन्होंने दस दिता भी ये गुरु कैसा चाहिए, शिष्य कैसा चाहिए, जड़िया शंका साडे मन में आ सकते। तीन पुत्र सी, ठीक है, एक राजा सी ओदा नां सी शुभ संतति और पताल पृथ्वी और स्वर्ग तिना लोकां दा वो राजा सी। ओदे तीन पुत्र सी, एक दा नां सी तत्व दृष्टि, जिहड़ा विचारला सी ओदा नां सी अदृष्टि जिहड़ा सब तो छोटा सी उहदा नाम सी तर्क दृष्टि। ठीक है, राजा राज करदा करदा एक दिन क्या सोच रहा है कि मैं तो हुण बुढ़ा हो गया, भी राज करद्या करद्या शांति तो मिलती नहीं, कोई ना कोई कदी ना कोई कोई ना कोई दुख आके मैनू अपना सुना दिंदा, मैं उहदे दुख नाल दुखी हो जाना, तो ये कब तक कैसे चलेगा। हुण मेरे पुत्र भी सियाने हो गए बई, तो हुण तो मैनू कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्हें अपने मंत्री नू बुलाया, मंत्री नू बुला के मंत्रियों दे नाल सलाह कर ली कि किदां कीता जावे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है राजा, जे तेरी इच्छा है तो बच्चे तो तेरे हुण समझदार है ही, सियाने भी आ, तो तू उन्हां नू राज दे दे। आंदा हाँ ये गल ठीक है। उन्हें अपने पुत्रां नू भी सद लिया, तिन्हां नू तिन्हां पुत्रां नू सद के बिठा लिया एकांत विच, एकांत विच बिठा के अपने वराग दे बचन सुनाउण लग गया। देखो पुत्रो, ये मैं धन संपत्ति कितनी इकट्ठी कीती है, तिन्हां लोकां दा राज मैं कीता, ये सारे पदार्थ मैनू सुख नहीं दे रहे, हुण मैनू दुख दे रहे है, इस वास्ते ये जिहड़ा हुण दुख रूपी राज है ना, मैं इहदे विच हुण सुखी नहीं रह सकदा, इस वास्ते ये राज तुहानू मैं दे दिंदा, तुसीं अपना अपना राज करो, मैं वंड भी दिंदा। तिन्हां नू वंड भी दित्ता उसने, तू पताल चल जा बई, तू पृथ्वी दा राज कर, तू स्वर्ग दा राज कर। ऐसे क्यों कीता? आंदा भी भरावां दे विच बाद च लड़ाई ना हो पे, मैं स्वर्ग दा राज मैं लैणा सी, मैनू पृथ्वी दा क्यों दे दिता, इस वास्ते मैं अपने हत्थी वंड ही दिंदा तुहानू। ठीक है, तो सवेरे फिर तुहानू मैं राज दे के आप निकल जाऊंगा। ये शाम दीआं गल्लां है। ठीक है, अब शाम दीआं गल्लां ये हो गईआं, तो वह तिन्ने भरा चले गए, राजा भी अपने महल चल गया, वो अपने अपने चल गए जिथे उन्हें विश्राम करना सी। अब तिन्ने जाके सोचने लगे, आंदे विचार करने लगे आपस में, आंदे भी साडा पिता जिहड़ा ये किहड़ियां गल्लां कर रहा, बड़े विराग दीआं गल्लां कर रहा, वो तिन्ना लोकां दी संपत्ति उहदे पास है, तिन्ना लोकां दा राजा वो, ते कह रहा मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं बड़ा दुखी हाँ, ये कैसे हो सकता। ते जे मान लो वो राज सानू देना चाह रहा, ते फिर जे वो नहीं सुखी हो सकिया, ते सानू उहदे पास तिन्ना दा राज सी, स्वर्ग पताल पृथ्वी, और सानू एक एक दे रहा है, जे वो तिन्ना ना सुखी नहीं हो सकिया, ते आपां एक एक लैके कैसे सुखी हो जांगे। तो सुख की कह रहा, वो कह रहा मैं हुण अपना आत्मा स्वरूप जो है ना, मैं उन्हूं जाणूंगा, जा करके काशी चले जाऊंगा, उत्थे जाके वेद शास्त्रां दा अध्ययन करके मैं अपने स्वरूप नूं जाणूंगा, तो सुखी होऊंगा। आंदे ए हुण रात रात ही साडे कोल हैगी आ, सवेरे ते इन्ने सानूं राज दे के आप ते निकल जाणा, ते हुण की कीता जावे सोचो। आंदे सोचणा सचणा की आ, उन्हें ते सवेरे जाणा, आपां हुणे चलदे आ, उन्हें तो सवेरे जाना है ना, सानू राज दे करके आप हुणे चलते हैं। तिन्ने भरा घरों निकल गए, ये कथा है। फिर वो तिन्ने भरा जाके गुरु की शरण में जाएंगे, तो गुरु नू जाके प्रश्न करेंगे, तो गुरु फिर उन्होंने उत्तर देगा। यह है निरोल ब्राह्मण, इतों तक कथा हूँ, बस उन्होंने प्रश्न उत्तर चलणगे गुरु के शिष्य के। पहला जी कथा थोड़ी आई है ना, तुम सुना दी है, ये दसणगे दोहां दे विच ऐसे ऐसे वो राजा सी, वो बेटे सी, ऐसे राजे नूं विराग हो गया, फिर राजे ने सोचा मैं राजपाट छड्डदा। ये कथा इन्नी सुना के फिर वो जिहड़े गुरु दे पास जाएंगे, उहदे नाल जिहड़े जैसे जैसे उन्हां प्रश्न कीते, जो जो गुरु ने उत्तर दिते, पहला एक करेगा वो मुक्त हो जाएगा, फिर दूसरा करेगा भरा, फिर दूसरा प्रश्न करकेगा वो फिर मुक्त होगा, फिर तीसरे नंबर आएगा, फिर भी उपदेश तो तीनों इकट्ठे सुन रहे हैं, तो पहली बार क्यों नहीं मुक्त हो गए। वो कह रहे इस वास्ते नहीं मुक्त हुए, वो तिन्ने जो सी ना, जिदा जिदा नाम से इदा दे, उन्होंने हिरदे भी इदा इदा सी, जिहड़ा तत्त दृष्टि सी वो उत्तम अधिकारी सी, जिहड़ा अदृष्टि सी वो मध्यम अधिकारी सी, वो जिहड़ा तर्क दृष्टि सी वो कनिष्ठ अधिकारी सी। उहदे बुद्धि दे विच शंका बहुत उपजदियां, जल्दी गल पकड़ च नहीं आउंदी, इस वास्ते बार बार उहनूं तीन बार उपदेश करना पिया। पहला भी सुनिया उन्हें जिहड़े वड्डे भरा नूं कीता, मचले जिहड़ा विचले नूं कीता, वह भी सुनिया, फिर भी नहीं गल बनी। फिर आप प्रश्न किए उन्हें इस वास्ते तिना भरावां दे प्रश्न उत्तर चलणगे ते तुसीं इह कल तों ग्रंथ चलेगा।